ॐ नमः सिद्धेश्य ॐ नमः सिद्धेश्य ॐ नमः सिद्धेश्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताम् नमो सिद्धां नमो आयरियां नमो वज्रायां नमो लोहे सुवसाहुनं दम्मो वत्थु सहावो कमादिभावो यदसविहो दम्मो चारित्तं खलु दम्मो जीवाणं रक्षणो धम्मो। कल हमने इसका अर्थ किया था, वस्तु स्वभाव धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, और जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट होती है तो हम कहते हैं वो धर्म प्रकट हुआ। ऐसे ही जीव, हम आप जीव है तो हमारा स्वभाव क्या है, तो चैतन्य ज्ञान आनंद हमारा स्वभाव है, और ये स्वभाव होने पर भी आनंद हमारा आनंद से भरपूर है, इसको कहते हैं आनंदमय है, आनंद का सागर है, फिर भी पर्याय में दुखी है। पर्याय में जब तक आनंद प्रकट हुआ नहीं है तो हम पर्याय में दुखी है, तो ऐसा क्यों? तो ये जो स्वभाव में जो भरा पड़ा है और कभी नष्ट नहीं हुआ है, अनंत काल से हम दुखी 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 अपनी इच्छाओं से राग द्वेष से दुखी हो रहे है, तो स्वभाव तो जैसा का वैसा भरपूर भरा पड़ा है, तो ये पर्याय में प्रकट करना उसको हम कहेंगे धर्म प्रकट करना। तो उसका उपाय क्या है? तो उपाय भी अपने में होगा। जहाँ कार्य होता है कारण वही उसी क्षेत्र में विद्यमान रहता है, कार्य ने पर्याय, किसी द्रव्य की पर्याय उसका क्षेत्र छोड़कर उसके बाहर नहीं होती। जीव की जो कोई पर्याय है वो जीव में ही होती है, जीव के अपने कारण से होती है, कोई परद्रव्य को देखकर या परद्रव्य के कारण या परद्रव्य आकर उसका कार्य करता हो ये बात तीन काल में संभव नहीं है। तो हमें धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, तो किसके पास चले जावे? कुदेवान के पास जाए तो धर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो हमारे सच्चे देव के पास जाएगी तो धर्म होगा कि नहीं होगा? तो हम तो आए ना यहाँ सच्चे देव के पास, तो उन्होंने बताया है, वो सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, क्योंकि अनादि से मैं शरीर हूँ ये बात सिखाने नहीं पड़ती किसी को भी, परंतु इस शरीर से मैं भिन्न हूँ और मेरा कुछ अलग जुदा स्वरूप है ये सिखानी पड़ती है। बिना सिखाए ऐसे किसी को सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी बात नहीं होती। अभी सिद्धालय में अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, वो भी पहले सिद्ध होने के पहले संसारी थे कि नहीं? कि कोई ऐसे विरले जीव थे जो संसारी थे ही नहीं और सिद्ध ही थे अनादि से? ऐसा नहीं था। तो वो भी ये सब 14 जीव समास में घूम रहे थे, और जब उन्होंने उस समय उन्होंने जो उपदेश सुना जिनेन्द्र भगवान द्वारा, जो उनके पास जो किसी निमित्त से मिल गया और उन्होंने अपने स्वभाव का लक्ष्य किया और धर्म प्रकट किया, तो जाकर वो अभी आज अरिहंत बनकर सिद्ध बन चुके। हम आप भी उनके जैसे ही जीव द्रव्य है। जो बात अनंतों ने प्रकट की है, क्या प्रकट किया? धर्म प्रकट करके सिद्ध दशा इन्होंने प्राप्त की है। अनंत जीव जिसको कर सकते हैं उसे हम आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वाधीन चीज है। स्वभाव को तो बनाना नहीं है, वो है ही है, अनादि से है, और उसको जानने वाले हमारे ज्ञान में भी हर समय परिणमन हो रहा है, जानने का कार्य भी हम कर रहे हैं, पर क्यों नहीं अभी तक प्रकट हुआ? हम रुचिपूर्वक पर की ओर ही अपना ज्ञान लगाए बैठे हैं, और पर में से ही सुख होगा ऐसा मानकर सारा उपचार पर में हो रहा है, अपनी ओर कभी लक्ष्य नहीं है, इसलिए धर्म प्रकट नहीं हो। मैं कॉलेज में पुना में पढ़ती थी और साइकिल पर मैं जाती थी कॉलेज में, हा? तो एक बार क्या हुआ, मेरे साइकिल के वो पहिए की हवा चली गई, तो मैं गई वो साइकिल वाले के पास, एक लड़का बैठा था वहाँ, तो मैंने बोला चला जरा हवा भर दो। उसने फटाफट पंप निकाला, उस जोड़ दिया और फट 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 शुरू कर दिया, बार बार देखते तो हवा ही नहीं भर रही, फिर और जोर जोर से दबाने लगा, फिर और टायर को देखता है तो कुछ हवा ही नहीं, तो फिर दोबारा भरने लगा। क्या हुआ था? पंचर हुआ था। थोड़ी देर में फट आवाज आ गई और क्या हुआ? वो बस्ट हो गया। क्या कर रहा था वो? अरे हवा गई थी सामने के पहिए से और वो पंप लगाया था पीछे के पहिए को और जोर जोर से हवा भर रहा था। ऐसे हमारा हो रहा है, नहीं समझे? उस पर तो हंसी आती है। यहाँ तो हम हैं दुखी, क्यों? अपने मोह राग द्वेष से। और उपचार कहाँ हो रहा है? सारा शरीर में, बाहर, इधर दुनिया में पूरा उपचार पर की ओर हो रहा है। तो हमको सुख कब मिलेगा? क्योंकि जिन पुद्गलों की ओर देखकर हम सुख की निगाह से उनकी ओर देख रहे हैं, रात दिन पंचेंद्रियों के विषय में से सुख होने की, सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कोई सुख नाम का गुण ही नहीं है पुद्गल में, और उनसे हम सुख चाहते हैं। और जो हम स्वयं सुख से लबालब भरे हुए हैं, उसका तो अता पता ही नहीं है। और फिर सारी सुख की कोशिशें हमारी बेकार क्यों हो रही है? संयोगों में से सुख मिलेगा, ये हमारी उल्टी मान्यता चल रही है। और उल्टी मान्यता के साथ वो तो कायम रखी, और थोड़ा सा पुण्य करेंगे तो हमें धर्म होगा, ये और एक दूसरी उल्टी मान्यता लेके बैठे हैं कि पुण्य करने से धर्म होता है, पुण्य करने से ही हमको मोक्ष मिलता है। इसलिए पुण्य के मोक्ष की ही इच्छा से कोई व्रत आदि अंगीकार किए, कुछ संयम धारण किया और कुछ कुछ कर दिया, बहुत सारे शास्त्र उलट पुलट कर दिए, परंतु अपना जो स्वभाव है उसका कभी लक्ष्य नहीं किया तो सुख की प्राप्ति नहीं। यानी हमारे सारे सुख के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं वो बेकार है। तो इसलिए कल शाम को भी मिथ्यात्व की बात आई, दौलत राम जी मैंने कहा है, ताको तजिए सुजान, किसको? ये पहली ढाल में तो बताया ना, इन सब 14 जीव समासों में इतना घुमा, इतना दुख पाए, क्यों? तो कि मिथ्यात्व के कारण। इसलिए मिथ्यात्व को अच्छी तरह से जानकर छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व क्या है पता नहीं तो उसको कैसे छोड़ेंगे? तो हमें धर्म प्रकट करना है तो ये धर्म कहाँ प्रकट होगा? हमने कहा वस्तु का स्वभाव तो धर्म स्वरूप है। दूसरी बात बताई कि उत्तम समाधि दश लक्षण धर्म है, धर्म के 10 लक्षण है, 10 अलग अलग धर्म नहीं है। आज कौन सी षष्ठी है ना, तो षष्ठी का धर्म कौन सा? षष्ठी में चला गया, पंचमी का भी चला गया, आज अभी किसी को क्षमा करने की जरूरत नहीं है, है ना? तो ये किसी तिथि का धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। और ये जो यहाँ जो अलग अलग धर्मों की जो हम एक एक दिन में एक एक लक्षण लेकर उसकी चर्चा करेंगे, वीतराग भाव एक ही धर्म है, वो वीतरागता, राग रहितता, उसको वीतरागता कहेंगे। बीत गया है राग जिनको, उसको हम कहेंगे वीतराग। पर स्वभाव तो अराग स्वरूप ही है, उसमें कभी राग हुआ ही नहीं। वीर जाने ने राग था वो निकल जाना, ये तो पर्याय में बात हो रही है, स्वभाव में तो कभी राग है ही नहीं। तो राग रहित ही स्वभाव है, उस राग रहित स्वभाव की हमको पहचान हो जाए, इसको आत्मा कहते हैं। जैसे स्फटिक में निर्मल जो निर्मलता है उसको स्फटिक नाम है, उसमें जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बगल में कोई चीजें है कलर वाली, वो उसका स्वभाव नहीं है। तो हमें पहले अपने ज्ञान में निश्चित करना है, वो दिख रहा है लाल कलर, उस समय वो स्फटिक की निर्मलता अपने ज्ञान के द्वारा नक्की करना है। ऐसे ही अभी यहाँ राग द्वेष मोह सब दिख रहे हैं, मान कषाय आदि दिख रहे हैं, परंतु आत्मा किसको कहना? जो सिद्ध भगवान की पर्याय प्रकट है वैसा उनका स्वभाव है, और जैसा उनका स्वभाव है वैसा हर जीव का स्वभाव है। हम उन स्वभाव को अपने ज्ञान में नक्की करना है। यहाँ देखने जाओ पर्याय, जो हमें अनुभव होता है वो पर्याय का होता है। अभी स्वभाव में इतना सब भरा है फिर भी उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका पर्याय में प्रकट नहीं हुआ। तो इसलिए उपाय क्या है? तो पर्याय में जो यहाँ क्रोध मान मायलो आदि जो भाव चल रहे जो है वो नहीं है, वो बात नहीं है, तो मेरा स्वभाव तो उनसे रहित है पहले नक्की करने मोक्ष। इसमें रत्नकरण शाकाचार्य में उत्तम मार्ग धर्म में यही बात बताई, मैं वहां से आपको पढ़ के बताती हूँ। अब उत्तम मार्ग उनका स्वरूप कहते हैं, मार्ग ने भी हम कषाय की भाषा नास्ती में कहना है तो क्या कहेंगे? मान कषाय के अभाव रूप जो है, और अस्सी में कहेंगे ये मार्ग धर्म है। तो मार्गो का स्वरूप है मान कषाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, आत्मा मैंने पर्याय में हो, आत्मा उस समय भी वो मार्दव धर्म उसका गुण कहीं चला नहीं गया। उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। उसको हम उत्तम मार्दव क्यों कहते हैं? उत्तम मुनियों की अपेक्षा जो अधिक वितरागता होती है उसलिए ये वहाँ उत्तम शब्द लगाया जाता है। पर ये मार्दव धर्म कब से शुरू हुआ? जब से सम्यक दर्शन होगा तब से ही होगा। क्योंकि नहीं नहीं हमको मान नहीं करना चाहिए, अपना अभिमान नहीं करना चाहिए, बस हमने भोग लिया और ऐसे प्रयत्न भी किए कि हम किसी पैसे का, शरीर के सौंदर्य का या जो सूक्ष्म ज्ञान है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, वो हमने अभिमान नहीं कर रहे, वो बात नहीं है, वो तो केवल बाह्य उपचार है। तो यहाँ कहते हैं तो ये क्या करना उसके लिए? आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करना, जिसको भेद ज्ञान कहते हैं। आत्मा शरीर से तो जुदा है ही है, परंतु पर्याय में जो विद्यमान रागादि है उसकी बात, जो नहीं है उसे क्या भेद ज्ञान करना है। और वो ज्ञान और मान कषाय कहो, ज्ञान और क्रोध कषाय कहो, ज्ञान और लोभ इतने एक में जैसे प्रतीत होते हैं कि मैं पूरा उसरूप हो गया ऐसा लगता है, भाषित होता है। ऐसे होने पर उस समय हमें विचार करना है कि ये जो राग द्वेष है सिद्धों में होते हैं क्या बेटा? नहीं होते, और हमारे यहाँ हो रहे, मेरे में हो रहे। और मैं जिसको हम कहें ना अपना स्वभाव हुआ कैसा है? सिद्धों जैसा। सिद्ध हमारे आदर्श है। आदर्श किसको कहते हैं? ये दर्पण को भी एक आदर्श नाम है, मालूम है कि नहीं? मिरर, अरसा, उसको आदर्श भी कहते हैं। वो दिखाता है ना आपको, ये सिद्ध भी हमारे आदर्श है। क्या दिखाते हैं? हमें हमारा स्वभाव दिखाते हैं। ये हमें भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? अरिहंतों के, सिद्धों के दर्शन क्यों करते हैं? वो हमारा स्वभाव हमें बताते हैं कि जैसे वे परमात्मा पर्याय में बन गए हैं वैसे हम स्वभाव से परमात्मा है, और उस स्वभाव को हमें ख्याल में लेना है। स्वभाव है परंतु अभी पर्याय में हम दुखी है, तो अभी उपाय क्या है? उसका उपाय भी बताया कि अभी हमारी पर्याय कहाँ लगी है, इसको जानो उसको जानो, इससे सुख प्राप्त हो, ये करो ये करो ये करो, ये सब बाहर ही बाहर, क्योंकि रुचि महिमा बाहर की है, तब तक ज्ञान उसकी ओर खींचा चला जाता है, उसी की रुचि है, उसी का ज्ञान है, उसी में हमारा प्रवर्तन हो रहा है। अब हमें क्या है? स्वभाव पता ही नहीं था। अब जब हम आगम से हमें स्वभाव का पता चलेगा, अरिहंत सिद्धों का स्वरूप जानने से हमको स्वभाव, अपने स्वभाव का पता चलता है। भगवान को देखने के लिए भगवान के पास नहीं जाते, सुबह उठते ही पहला दर्शन करते हैं आईने का, है ना? किसको? आईने को देखने के लिए कि अपना मुकुड़ा देखने के लिए? क्योंकि ये मैं हूँ समझ लिया तो अपना स्वरूप देखने के लिए हम दर्पण के सामने जाते, कैसा दिख रहा है, ठीक ठाक है कि नहीं, है ना? ऐसे उठते हम भगवान का दर्शन क्यों करते हैं? अपने स्वभाव का दर्शन करने के लिए कि मैं ऐसा हूँ। और अभी वो पर्याय में जो हीनता चल रही है उसका उपाय भी दूर करने का उन्होंने बताया। ये दस धर्म में पूरा ही बता दिया मैं कैसा है और उसका उपाय क्या है, वो आत्मा के धर्म क्या है, उसका वो प्रकट करने के उपाय क्या है, ये सब दस लक्षण में आ जाती है बात। यहाँ क्या लिखा उन्होंने फिर पढ़ते, आत्मा और मान कषाय के भेद को, ये भेद है उसमें, एक में हुए नहीं है, एक में एक से लगते हैं, लगना बात अलग है और रियलिटी बात अलग होती है। बहुत सारी बातें लगती है हमको, हम ट्रेन में बैठे है ना, तो क्या होता है प्लेटफॉर्म में खड़ी है गाड़ी, कहीं जा रहे थे तो स्टेशन पर खड़ी है, तो इधर हम दूसरी खिड़की से बाहर झांकते हैं तो ऐसे चलो हम चले अभी आगे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बगल वाली जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, वो तो उल्टी दिशा में जा रही है, तो हमें लगता है हम आगे चल रहे हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे शास्त्र में पंचाशिका में भी लिखा है, इसको कहा नवयान संस्कार, लंबा से कोई शब्द आ गया तो हमें क्या लगता है, जैसे नौका में बैठे हुए जीव के संस्कार क्या है, उसको ऐसा लगता है कि किनारे पर जो कोई चीज है वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, और वो स्वयं तो आगे जा रहा है और उसको लगता है कि बाकी चीजें पीछे जा रही है। उस जमाने में ट्रेन नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौका का वहां उदाहरण दिया। ऐसे यहाँ हमें लगता है, पर हमें ये लगता है वो बातें सच है ये जरूरी नहीं है। तो हमें जो रियलिटी है, जो वस्तु स्थिति है, उसको यहाँ समझना है। हमें लगता है कि हम उस कषाय रूप से हो गए, परंतु कषाय रूप हमारा एक समय के लिए परिणमन है और वो विभाव भाव है। जैसे पानी गर्म हुआ है, पानी का स्वभाव क्या है? वो गर्म उबला हुआ पानी का स्वभाव की अपेक्षा ऐसा शीतल है, इसलिए उसमें हाथ डुबाने के नहीं बोल रहे। पर्याय का विवेक होना चाहिए, परंतु उसके स्वभाव का हम ज्ञान कर सकते हैं। जैसे उबला हुआ पानी आपने वो जलती हुई लकड़ी पर डाला, क्या होगा? उबलता पानी है? और एकदम ठंडा ठंडा घी डाला तो क्या होगा? परंतु यहाँ हमें स्वभाव का स्वभाव की दृष्टि, देखो दृष्टि ने वो हमें प्रतीति में लेना है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतीति में लेना है। जैसे आम का बीज है, गुठली है, हम कहते ना उसको हमने बोया, तो उसमें कितनी शक्ति है? स्वभाव क्या है? पूरा आम वृक्ष बनने की, पेड़ बनने की शक्ति है। शक्ति है कि तो हमने क्या किया, क्योंकि हम साइंस वाले विद्यार्थी है ना, तो हमने डिसेक्शन सीखे हम, तो हमने वो फोड़ी और अंदर की वो बी होती ना कोई चीबी वो निकाली और उसमें और फिर चाकू से उसको ऐसे दो फाड़ किए, तो हम स्वभाव ढूंढने लग, कहीं वो तो आम वृक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया, बहुत पीसेस किया माइक्रोस्कोप पे, कुछ कहीं नहीं दिखा, तो कैसे उसको हम नक्की करेंगे तो वो बोने से पेड़ हो जाएगा? विश्वास, वहां तो बहुत विश्वास है। आम के वृक्ष के लिए कोई हम चना नहीं बोते, वो आम की गुठली में इतने स्वभाव पड़ा है उसका विश्वास है। अच्छा ठीक है, फिर वो बाद में इतना पौधा हुआ तो पूरा वृक्ष बनने का स्वभाव उसकी सामर्थ्य वहां पड़ी है कि नहीं पड़ी? अभी इतने से दो चार पन्ने तो उग गए हैं, तो पूरा वृक्ष होने की सामर्थ्य उस समय विद्यमान है, वो विश्वास में हमें है। ऐसे ही हम आप अभी इस पर्यायों में जो 14 जीव समासों में घूम रहे, सारे ही जीवों में सिद्ध भगवान बनने की सामर्थ्य इन सभी में है। कोई भी पर्याय में क्यों न हो, उस पर्याय के पीछे पूरा सामर्थ्य विद्यमान है और उस सामर्थ्य के हम प्रतीति विश्वास करना है और उस विश्वास के साथ उसमें एकाग्र कहते वो सब विधि आती है। तो कहते इसको कहने भेद विज्ञान, मेरा जो असली स्वभाव है वो उस समय भी विद्यमान है, तो जानना जानना मेरा स्वभाव है। उसी पर्याय में यहाँ रागवेश भी हो रहे, उसके साथ हमें भेद ज्ञान करना है। देखो ये वाक्य में रत्न ग्रंथ शाकाचार का फिर पढ़ती हूँ, आत्मा और मान कषाय के भेद को, यहाँ मान को लेकर मुख्यता है आज क्योंकि मार्दव की चर्चा इसलिए, परंतु सभी कषाय के सभी राग द्वेष के साथ यही रूल, भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करना है ने क्या करना, क्योंकि शरीर से जीव जुदा है, ये तो कोई अन्य मति भी कहते, उसके लिए धर्म की भी जरूरत नहीं है। अरे अभी अभी तो बोल रहा था, अभी तो ये तो शरीर पड़ा रहा हो तो जीव निकल गया, हमके प्राण उड़ गए, जीव चला गया, अन्यत्र उसने देह धारण किया। जब तक यहाँ पता नहीं लगता तो उसके कितने भाव बदलते, पर्याप्त अपर्याप्त में चर्चा सुनेंगे। अभी तो यहाँ पता है, अभी तो डेथ सर्टिफिकेट मिलने के लिए भी कितना टाइम लगता है, कोई जल्दी नहीं होनी तो डॉक्टर आएगा लपेट में, दो ढाई घंटे की वो तो टाइम पास करते हैं, बाद में जाकर डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। और मान लो कोई अपने ऐसे परिणामों वश अपर्याप्त में जन्म लेते हैं, तो एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भव पलट जाएंगे और हम रो रहे इस भव के लिए उसके, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी वो सब जीव समाज की बात आएगी तब सब आप सुनेंगे उसमें। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर से भेद विज्ञान तो आसान है, तो सामान्य कोई भी उसको समझ सकता है। अभी तो ये चल रहा था, बोल रहा था, ये क्या हुआ, इसमें से कोई चीज थी जो अभी नहीं रही? तो राग द्वेष से जो भेद विज्ञान है, ये जिनागम की बिल्कुल रहस्य की जो चाबी है और सबसे आसान चीज है, उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। राग द्वेष हमारे पर्याय में हो रहा है और जानने का कार्य भी हो रहा है, और हमने दोनों को इतना एकमेक मान के रखा है कि हमें, मैं वो जानने वाली चीज जुदी हूँ और ये जो बात जुदी है ख्याल में नहीं आता। इसलिए एक वाक्य में उन्होंने आज के धर्म की बात बताई है, आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करना, यानी ऐसा संको हम कैसा एहसास हो रहा है, मैं राग में हूँ, मैं क्रोधी हो गई, अभी बात मत करना, भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, कहते ना, यानी मैं गुस्से रूप हो गई ऐसा लगता है। उस समय मैं तो ज्ञान रूप हूँ और ये गुस्सा है पर्याय में विभाव रूप पर वो जुदा है, ऐसा उस समय इसको कहेंगे भेद ज्ञान करना। ये मूल जिनादों का रहस्य और कुछ नहीं है और बिल्कुल सरल है। तभी तो आचार्यों ने उपदेश दिया कि नहीं दिया, कैसे कठिन होता तो उपदेश, पर ये उपास करना आसान लगता है। कई तीर्थ क्षेत्र पे जाके आना आसान लगता है, 10 दिन मौन रखना आसान लगता है, परंतु ये भेद ज्ञान करने को नहीं, हमारे लेवल की बातें हमको समझो, वो हाई लेवल की बात सम्यक दर्शन की मत करो। तो कहते सम्यक दर्शन ये सबसे पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की, प्रथम सीढ़ी, तो उसको समझे बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। हम क्या करते हैं, वो तो मिथ्यात्व नाम का जो कुछ बड़ा पाप वो तो कायम रखते हैं, नहीं समझे, हम लौकिक बात करते हैं। हमारे बच्चे खेलते रहते कहीं ना कहीं, तो रस्ते पर फिसल गए, बहुत चोट आ गई, मिट्टी गंदा सब कुछ में भर गया और घर में आया तो मम्मी ने क्या किया, उसके हाथ पकड़कर उसके ऊपर पट्टी लगा दी, बहुत अच्छी, कौन कौन से आते हैं अच्छे ब्रांड वाली, बराबर किया कि नहीं किया? हाँ हाँ, क्या हुआ, पहले सफाई करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अंदर जो कुछ चीजें घुस गई है वो अगर ऐसे ही रखेंगे और ऊपर से पट्टी लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जो जर्म्स जो कीटक है ये कुछ जंतु है वो पनपने में उसको अनुकूलता मिलेगी, क्योंकि अभी तो ऊपर से बंद कर दिया और अंदर तो चलो जितना घुसे सेप्टिक हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा और क्या क्या हो जाएगा। ऐसे ही हम आप क्या कर रहे हैं, अनादि से कर रहे हैं, आज की बात नहीं है कि मिथ्यात्व नाम की वो जो कुछ शल्य वहां पर भी शल्य रहते हैं, क्योंकि बंदूक की गोली हो या कांच की कोई टुकड़ा हो इसको शल्य कहेंगे, कांटा हो तो अंदर ऐसे रह गया, ऊपर पट्टी बांधी ऐसे होता है क्या, वो तो सेप्टिक हो जाएगा। ऐसे ही मिथ्यात्व को भी शल्य कहा है, वो मिथ्यात्व वाला शल्य, मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, वो कायम रखी और ऊपर पट्टी बांधी, किसकी, व्रतों की, क्या होगा, मिथ्या तो और पनपेगा, क्योंकि उनके मान लिया कि मैं मोक्ष मार्गस्थ हो गया हूँ, मैंने इतने प्रतिमा धारण की है बस अभी हम, तो मिथ्या तो का क्या होगा, आप कहेंगे तो उसका भी क्या करेंगे सके के लोग, ये कोई ऐसा नहीं कहते हमने मिथ्या का नियम लिया, इन्हें क्या किया तो हमने कुदेव आदि को नमन करना छोड़ दिया, तो अरिहंत सिद्धों का स्वरूप जानते हो, उसकी क्या जरूरत है। हमें ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान से कहाँ कहाँ से क्या क्या फोन आते हैं, चलता है कहाँ क्या मान्यता चलता है, तो सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानना वो भी मिथ्यात्व है। नहीं, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, पर पूजा किसकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान के दर्शन भी क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है भगवान के दर्शन करने की, ऐसा मैं पूछती हूँ, आप क्यों कर रहे हो। हमारे यहाँ देखो अपने यहाँ रोज स्वाध्याय चलता है, तो दिगंबरों से श्वेतंबरों की संख्या हमारे पास ज्यादा है, कोई मूर्ति पूजक भी आते हैं, स्थानकवासी भी आते हैं, और जो आते हैं तो चिपक जाते हैं, दिगंबरी हो जाते हैं, क्योंकि सच्ची तो मान, सच्चा माल तो अपने पास है, पर दिगंबर हमारे इतने से पहले से अपने को सर्वज्ञ मानकर बैठते हैं, क्योंकि उनके घर का माल है ना, उनको उसकी कीमत नहीं है, और जिनके घर में ये माल नहीं है उनको उसकी बहुमानता आती है, और वो तो एक बार सुनते हैं तो बस बिल्कुल अपने को स्थानकवासी कहने में उनको शर्म लगती है, इतने वो हो जाते पूरे, एक दो नहीं कितने लोग, ये क्या अमेरिका में क्या दिगंबर कितने आते हैं सुनने को, श्वेतांबरों की मेजोरिटी होती है, और जो सुनते हैं वो बिल्कुल इतने चुस्त हो जाते हैं सुनने के लिए, और वो फॉलो भी उतने करते हैं। डलस में हम गए थे, वहाँ एक भाई ने एक ही, वो वहां का तो नास्तिक समझा जाता है, क्योंकि जो आते थे उनके साथ चर्चा विवाद करता बैठता था, उसने एक प्रवचन सुना मिथ्यात्व संबंधी कुछ बात, वो भी दर्शन करने को आया था, और जाते जाते उसने सुना मिथ्यात्व वगैरह वगैरह जो कुदेव आदि की बात जो सुनी, तो घर में गया और उसकी पत्नी वो श्वेतांबर और वो दिगंबर, और उसने वो चर्चा करके नक्की किया कि ये जो हम सब करें, क्योंकि वो मिथ्या देवताओं की, रागी देवताओं की दरबार वगैरह ऐसी चर्चा इनके प्रवचन में सुनी थी, तो उसने वो सबको इकट्ठा कर दिया और घर के बाहर कर दिया, और जहाँ वो देवारा बनाया था तो उसमें फिर हमको पूछा कि वहाँ क्या रखोगे, मैंने बोला यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं, आप शास्त्र जी रखिए और नमस्कार कीजिए, बाकी जब चाहे तो मंदिर तो है ही आपके गांव में। तो उन्होंने एक प्रवचन में पूरे को हटा दिया घर से, यानी ऐसे भी बहुत सारे मिले हमें, जहाँ जाते कोई कोई मिलते हैं ना, तो केवल वो तो मिथ्या देव को नमस्कार नहीं किया पर सत्य देव को नमस्कार किया पर उसका स्वरूप मालूम नहीं है तो कहते वो उतना ही गृहित मिथ्या। तो इस तरह से अगर बाहर से हम कुछ आचरण करके अपने को सम्यक दृष्टि मानने लगे तो वो सम्यक नहीं है। तो क्या करना है? तो भेद विज्ञान करना है। तो भेद किसमें किसमें भेद करना है? ये रागादि मैं नहीं हूँ पर्याय में है, जैसे वो स्फटिक लाल नहीं हुआ है पूरा, पर्याय में वो अभी लाल रूप दिख रहा है उस किसी के संयोग में, परंतु उसकी निर्मलता अपनी चली नहीं गई, वो विद्यमान है। अभी हमें अपने बारे में ऐसा ही सोचना है कि मैं मान रहित ऐसा बिल्कुल वितराग स्वभावी हूँ। अब उसको पर्याय की अपेक्षा जब उपदेश की भाषा आती है तब कहेंगे अभिमान मत करना। परंतु आपने सुना होगा सम्यक दृष्टि के आठ मद, मद यानी अभिमान होते ही नहीं। कौन से आठ मद मालूम है बेटा? कुल का मद, जाति का मद, रूप यानी सौंदर्य का मद, धन का मद, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद, ऐसे अलग अलग जो मद बताए हैं ऐसे मद उसको नहीं होते। क्यों नहीं होते? मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा उल्टा नहीं है, उसके उत्पन्न ही नहीं होते। क्यों? जिसने आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान जाना है अपना अनुभव सही, तो केवल बोलने के लिए नहीं, तो शरीर के संबंध से उसका मेरा क्या संबंध है? मैं तो उससे जुदा हूँ, उससे मैं भिन्न हूँ, तो उसके कारण मैं थोड़ा ही महान हूँ। पैसा तो अत्यंत जुदा पदार्थ है, उसके कारण मुझे महानता काहे की? ये ऐश्वर्यता है, तप है, जो बाह्य शरीर का बल है, उसका तो मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो जुदा ही हूँ, मैं तो अरूपी वस्तु हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। तो इसलिए अपनेपन जहाँ उससे भिन्नता अनुभव होती है तो उसके कारण हम महान कैसे बने? इसलिए सम्यक दृष्टि को ये मन उत्पन्न ही नहीं होते हैं। और यहाँ बाकी जीवों को क्या उपदेश देने में आता है? कैसा मान, क्यों काहे का मान कर रहा है? वो राजा था, वो भी विष्ठा का कीड़ा होकर उत्पन्न हुआ, तो काहे का मान रखता है? तो तू अभी इस पर्याय में उत्पन्न हुआ है, तो इन सभी निगोदादी पर्याय में घूम कर आया है, वो काहे का मान? ये धन संपत्ति काहे, उसकी क्या भरोसा? अभी जो राजा है वो किस क्षण में वो कहाँ चला जाएगा? अभी जो चक्रवर्ती है, आपको शायद मालूम होगा, जो चक्रवर्ती अपना चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि अवस्था धारण करके धर्म की साधना करते हैं, या तो स्वर्ग में जाते हैं मोक्ष में जाते हैं, और जो चक्रवर्ती पद में ही रचे पचे रहते मर जाते हैं, वो मर कर नियम से सातवें नरक में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ चक्रवर्ती का राज भोग रहा है, वो नेक्स्ट समय में एक समय में मरकर वह सातवें नरक में जाके उत्पन्न होता है, इतनी प्रतिकूलता। तो काहे का गर्व कर रहा है, काहे का मद कर रहा है? उपदेश की भाषा में तो ऐसा है करके ही तो मान मत कर, अकेले अपने को अभिमान करना यही मान कषाय नहीं है? अभी शरीर दुबला हो गया, पैरालिसिस हो गया मान ली, तो अपने को क्या मान रहा है? हीन दीन गरीब बेचारा, अपने को ही इंफीरियरिटी मान रहा है, वो भी मान कषाय का ही हो सकते। माने में अपने श्रेष्ठ मानना इतना ही मान है ही नहीं, शरीर के कारण अपने को हीन मानना, दरिद्रता के कारण अपने को हीन मानना, कोई कुरूपता के कारण अपने को हीन मानना, ये भी मान कषाय का दूसरा रूप। तो कहते हैं कि ये तो इससे मैं जुदा हूँ, तो इसके कारण मैं मान महान कैसे बन सकता? इस तरह से सम्यक दृष्टि को तो अनुभव पूर्वक अपनी प्रकृति चल रही है, इसलिए उसको ये मान उत्पन्न ही नहीं होते। परंतु यहाँ जब उपदेश की बात आती है, पूजा में भी आप अपने सुबह पूजा में भी पढ़ो ना, मान महा विषय रूप वगैरह वगैरह बातें जो हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि लौकिक में भी जो अभिमानी होता है, गर्व करने वाला है, उसको कोई अच्छा नहीं कहता, भले बाहर से उसको कुछ कहे नहीं कहे, अंदर से अगर उसके कुछ हो जाता है, पतन हो जाता है कोई उसकी, तो बहुत सामने वाले को अच्छा लगता है, अच्छा हो जाएगा उसकी बहुत अपने को मानी समझता था ना, अच्छा हुआ उसका, ऐसे सामने वाला भी सोचता है। यानी लौकिक में भी ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत महत्व नहीं देते हैं, इसलिए वो उपदेश की भाषा में तो ऐसा ही होता है कि वो मान को मत करना ये बहुत बुरा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी मान के ये मार्दव धर्म के इसमें भी बहुत ज्यादा यहाँ देखो रत्नकरण शापाचार में से मैं पढ़ रही हूँ, संसारी जीवों के अनादिकाल से मिथ्या दर्शन का उदय हो रहा है, उसके उदय से देखो कर्मों के उदय से ये निमित्त का कथन है, परंतु वो स्वयं मिथ्या स्वरूप परिणमित हो रहा है। और कहने के लिए क्या कहेंगे, मिथ्या तो कर्म का उदय हो रहा है परंतु जीव स्वयं अज्ञानी हो रहा है, वो अपना स्वयं भ्रांति उसकी खोटी मान्यता चल रही है उसकी, और उस खोटी मान्यता भी कोई नहीं दर्शन हुआ, उसी को कहेंगे मिथ्या। तो उसके कारण उसे पर्याय बुद्धि हो रही। ये पर्याय बुद्धि क्या होती है, कोई पीछे बताएंगे?
पर्याय में एकत्व बना।
हाँ, पर्याय में कौन सी पर्याय में, यानी कौन सी? हाँ देखो, ये जब पर्याय बुद्धि शब्द आता है ना, तो स्थूल पर्याय जिसको कहेंगे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, तिरिंच पर्याय, इसको पर्याय कहेंगे। जिस भाव में गया है, जो शरीर धारण किया है, वही मैं हूँ, ये उसकी पर्याय बुद्धि है। प्राप्त पर्याय जिसको कहेंगे, यानी वो एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो उसकी बात नहीं है, उसको भी पर्याय कहेंगे। हर समय 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 परिणाम होता है, उसको भी पर्याय कहेंगे। पर यहाँ पर्याय बुद्धि जब शब्द आता है, तो ये प्राप्त पर्याय जिस भाव में वो गया है, उसको वो यह मैं हूँ ऐसे समझता है, उसको कहेंगे पर्याय बुद्धि। यानी अपने को शरीर मानता है, जितना ज्ञान का उभार है उतना ही अपना स्वरूप कायमी स्वरूप मानता है, और जिसमें मैं अपना स्थापित किया उस रूप उसकी विचारधारा स्वयं में चलती है। अभी आपने एक वाक्य सुना था कि किसी भी जीव को मैं हूँ ये सिखाना नहीं पड़ता, यानी मैं हूँ इसका एहसास हर जीव को है, एक जीव को भी है, परंतु भूल कहाँ हो रही है, मैं कौन हूँ में भूल हो रही है। क्यों ऐसी भूल क्यों हो रही है, क्योंकि मैं हूँ इसका एहसास तो हो रहा है, क्यों? क्योंकि जीव गुण, जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन ये श्रद्धा ये सब उसमें गुण विद्यमान है, तो उसका परिणमन भी चल रहा है, तो मैं हूँ पना की प्रतीति हर जीव को है। तो उसके पास तो इंद्रिय ज्ञान से कहाँ देखा, बाहर ही बाहर देख रहा था, तो उसने अपनी ओर देखा या उसको जो कुछ फील हुआ है कि इंद्रियों को स्पर्शन इंद्रिय, तो देह ही उसके ज्ञान में आ गए, तो उसने क्या मान लिया, यही मैं हूँ। सिखाया नहीं किसे, परंतु इंद्रियों के द्वारा अपने को जानने की कोशिश की, तो ये शरीर ही मैं हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र में जीव है उसी क्षेत्र में मेरी भाषा में शरीर के परमाणु डिपॉजिट हुए। कहीं से मरकर आया तो माँ के पेट में कोई रेडीमेड शरीर नहीं था कि जिसके अंदर वो घुस गया, क्योंकि जीव तो आया था खाली तेजस शरीर और कार्बन शरीर लेके, और एक जीव द्रव्य, और उसी में उसी के उन्हीं प्रदेशों में कर्म और उसके जो कुछ था, तो वहाँ सहज निमित्त और नैमित्तिक संबंध से वो शरीर संबंधी पुद्गल परमाणु आकर वहाँ शरीर की रचना हुई थी। कितने डॉक्टर्स आए थे उसका हार्ट बनाने के लिए, किडनी बनाने के लिए, लिवर बनाने के लिए, स्किन ऊपर थापने के लिए, क्या क्या हुआ था, कितनी टीम इकट्ठी हुई थी, वो ऑटोमेटिक सब हो गया, वो पर्याप्ति के प्रकरण में आ जाएगा, कैसी ऑटोमेटिक रचना हो जाती है, हमको पता ही नहीं ना क्या होता है। परंतु जब वो कुछ बीमार हो जाता है, कुछ उसमें गड़बड़ होती है, तो क्या क्या होता है, हॉस्पिटल के बिना अपने कुछ चलता ही नहीं। क्योंकि भगवान किसको मान रहे हैं आजकल, डॉक्टर, क्यों, शरीर मैं हूँ और मेरे लिए पूरा वो शरण रूप वही है, लोक में मंगल वही है, उत्तम यही है, उत्तम तो डॉक्टर की क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेकर जाने पर भी घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा ठहरने के लिए टाइम है, वो डॉक्टर कितना दूर है इसका कोई विचार नहीं करता है, है ना। परंतु मंदिर के लिए क्या क्या विचार होते हैं, बहुत दूर है, टाइम नहीं है, भगवान को दर्शन देने के लिए भी टाइम नहीं है, करने के लिए नहीं। अरे वो क्या सबको हम घर में बैठे कि वो हमें जानेंगे कि नहीं जाने, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, ऐसा लगता है। हमने कहीं सुना वो लिखा हुआ है, जिसे मंदिर दूर लगता है उसको नरक पास है, तो यहाँ तो भगवान के पास भी इतने जाना है कि वो हमारा स्वरूप हमको बता रहे हैं, वहाँ मुख उपदेश चल रहा है और उसको हमको जानना है। तो जो पर्याय बुद्धि होती है, अपना समय हो गया है, एक मिनट में बंद करती हूँ। जाति को, कुल को, विद्या को, ऐश्वर्य को, तप को, रूप को, धन को, शरीर को, यानी शरीर के बल को अपना स्वरूप मानकर इनके गर्व रूप हो रहा है, तो ये नहीं जानता, ये सब जो बातें हो रही ना, शरीर का जो रंग है, रूप है, जो हड्डी की मजबूती है, जो कुछ है, वो कर्म के उदय में हो रही है, उसमें इसका कुछ नहीं है। तो पैसा तो हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया कि नहीं कमाया, तो कहते वो भी पुण्य पूर्व के पुण्य से मिलता है, निमित्त रूप से जब हम कहेंगे। तो हमने तो शरीर को अच्छा रखा ना, इतनी लंबी जिंदगी तो मिली ना, अरे वो भी कर्म के उदय में। अगर आयु है तो कोई उसको आकर उसको मार नहीं सकता है, तो हमने तो उसको बचाया कि नहीं बचाया। अगर उसकी आयु समाप्त होती तो तू क्या करता उसमें। तो ये सब कर्म के उदय में मिलने वाली जो संयोग है वो मेरी है, मेरे कारण है, ऐसा मानकर उसी में वो अहम बुद्धि करता है, यही तो मानकशा है उसकी। जो मैं स्वयं हूँ उसको तो माना ही नहीं, ये सबसे बड़ी महान हिंसा हुई। हम तो जैनी है, अहिंसक है, परंतु तो अपनी हिंसा अनादि से हो रही है, जिसका अस्तित्व का ही उसने नकार कर दिया है। अपना अस्तित्व आत्मघाती है, और आत्मघाती महापापी होता है। उसने अपना स्वरूप का कभी विचार नहीं किया, उसकी जो अस्तित्व है उसका अनादि से, उसका स्वीकार नहीं किया है, वो उसकी अपनी मान्य, उसका अस्तित्व मिट नहीं गया है, उसने अपनी मान्यता में उसको नहीं का बराबर कर दिया है, इसलिए उसको वो हिंसा का महादोष लग रहा है। मिथ्या तो परिग्रह भी है, मिथ्या तो हिंसा भी है, सब कुछ है। अभी जितना उसका वर्णन सुनो उतना कम है ना। तभी हमें ये जो मार्ग धर्म प्रकट करना है, तो ये मानादि जो कषा है, मैं उनसे रहित ज्ञान स्वरूप हूँ, इस तरह से उसको वेद ज्ञान जो कहेंगे उसका स्वीकार करके, अपना जो वितराग स्वरूप स्वभाव है उसको जानकर उसमें दीनता करनी। हमें तो ध्यान के नाम पर ध्यान करने बैठ जाते हैं, पर किसका ध्यान करना क्या है वो कुछ मालूम नहीं है, तो सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में बैठते हैं। और यहाँ तो कहते हैं सम्यक दृष्टि तो निशंकित अंग होना चाहिए, और बाकी वो सब चलता रहता है। तभी हम और अन्य धर्मों के आधार से उसकी और भी चर्चा कल करेंगे, अब यही रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान।